السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. رمضان نصف گزر چکا ہے اور اب آدھا ہی باقی رہ گیا ہے. امام ابن الجوزی فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارا مہینہ آدھا گزر گیا، تو کیا تم میں سے کسی شخص نے اپنے نفس کو کچل کر تابع فرمان بتایا؟ یعنی کسی نے اپنے نفس کو اتنا ٹرین کر لیا ہے کہ اب میں نفس کی نہیں سنوں گا، اور نفس کو دبا دے اور اللہ کی مرضی کو آگے رکھے، تو کیا اس کو اپنا فالوور بنایا یا ابھی تک اسی کو فالو کر رہا ہے؟ کیا تم نے ان باتوں پر عمل کیا ہے جو تمہیں پہنچی ہیں؟ اب یہ دیکھیں، ہمارا پروگرام کافی دن سے آپ سن رہے ہیں، تو کیا ابھی تک ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے جو بھی آپ تک پہنچی ہیں؟ پھر آگے وہ فرماتے ہیں، کیا تمہیں اعلیٰ منازل کو پانے کا کوئی شوق پیدا ہوا ہے کہ میں نے مثلا کہ جنت تک پہنچنا ہے، جنت الفردوس پانی ہے، اللہ کی رضا پانی ہے، تو ایسی منزلیں پانے کا شوق پیدا ہوا ہے؟ ان ایام میں نیکیاں کرنے والے اپنا کام جاری رکھیں اور برائیاں کرنے والے اپنے آپ کو ملامت کریں، کیونکہ اگر اس مہینے میں بھی خسارہ ہی اٹھانا ہے تو پروفٹ کب کمائیں گے؟ اگر ابھی بھی نقصانات کو خیر باد نہیں کہنا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمائی نہیں کرنی، تو اور کب کرنی ہے؟ کہیں ہمارا حال بھی وہی تو نہیں جو حال اس چھوٹی مچھلی کا تھا؟ ایک کہانی ہے، کہتے ہیں ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی ڈال کے اور دریا میں پھینکی، ایک مچھلی اس کو کھانے کے لیے دوڑی، وہیں ایک بڑی مچھلی نے اس کو روکا کہ اس کو منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تمہارے حلق میں چپ جائے گا اور کوشش کے باوجود بھی نہیں نکلے گا، تمہارے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس ڈوری، باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی، تم تڑپو گی، وہ خوش ہوگا، اس باریک ڈوری کے ذریعے وہ تمہیں باہر نکال لے گا، چھری سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، مرچ مسالہ لگا کے آگ پر ابلتے تیل میں ڈال دے گا، اور 10 10 انگلیوں والے انسان اپنے 32 32 دانتوں سے چبا چبا کے تجھے کھائیں گے، یہ تمہارا انجام ہوگا. بڑی مچھلی سمجھانے کا حق ادا کر کے چلی گئی، چھوٹی مچھلی نے دریا میں اپنی عقل سے ریسرچ کی، نہ کوئی یہاں پہ شکاری ہے، نہ آگ، نہ کھولتا پانی، نہ مرچ مسالہ، نہ کوئی 10 10 انگلیوں والے آدمی، 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا. چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی بس جاہل ہے، ایسی ہی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی باتوں میں. اس نے خود ریسرچ کی اور بڑی مچھلی کی کسی بات کو بھی سچ نہیں سمجھا. اس نے کہا، میرا مشاہدہ یہی ہے کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں اور ان کے اوپر زیادہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اس نے اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پہ بوٹی کو منہ میں ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کے باہر نکالا، اور آگے وہی سب کچھ ہوا جو بڑی مچھلی نے بتایا تھا. کیا سمجھا اس سے؟ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات اور واقعات تفصیل سے بتا دیے. بڑی مچھلی کی طرح کئی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ انبیاء کی باتوں کو مان کے ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں، اور کئی لوگ چھوٹی مچھلی کی طرح سوچتے ہیں کہ جو انبیاء نے راستہ بتایا وہ تو پرانا راستہ تھا، اس کو چھوڑ کے اپنی ریسرچ کے ساتھ خود اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. لیکن موت کا کانٹا چبھنے کی دیر ہے، سارے حالات سامنے آ جائیں گے. مچھلی جب ایک دفعہ پانی سے نکل گئی تو کبھی واپس نہیں گئی، इंसान भी दुनिया से जाएगा तो वापस नहीं आएगा। सेकंड चांस उस मछली को नहीं मिला, सेकंड चांस हम में से कभी किसी को नहीं मिलना। बस यही वक्त है, अगर हम समझ गए तो बहुत सारा फायदा कमा सकते हैं, अपनी आखिरत की तैयारी कर सकते हैं, और अगर हम ना समझे तो बहुत नुकसान है, इसलिए कि दोबारा ये वक्त कभी हासिल नहीं होगा, दोबारा कभी भी इस दुनिया में आना नहीं होगा। हम इसी दुनिया के झमेलों में पड़े, में इसी की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे में, और ये भूले में कि एक आखरत है जिसमें आज की गई भी नेकियां ही काम आनी है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारी नादारी और फकीरी का डर नहीं है, मुझे तो इस बात का डर है कि दुनिया तुम पर कुशादा कर दी जाएगी, तुम यानी तुम्हारे पास बहुत मालो दौलत होगा, जैसे कि तुमसे पहले लोगों के लिए आशाइश कर दी गई, फिर तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे जैसे कि तुमसे पहले लोगों ने किया था, फिर वो तुम्हें हलाक कर देगी यानी ये दुनिया, जैसे कि इसने पिछले लोगों को हलाक कर दिया। ये बुखारी में हदीस मौजूद है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, अगर हम इस चीज का यकीन कर लें कि एक दिन अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होना, एक दिन इन सब बातों का जवाब देना, एक दिन मेरा एक एक अमल मुझे दिखाया जाएगा, उस दिन की हसरत से अगर बचना है तो मुझे आज कुछ करना है। खास तौर पे अल्लाह ताला ने ये दिन, ये महीना, ये सब हमें देख के ना बड़ा हम पर करम किया, जैसे हर दिन और हर महीना एक जैसा नहीं होता, इस तरह ये रमजान, ये औकात, जैसे जुमा का दिन, ये भी दूसरे दिनों जैसा नहीं है। हर वक्त की अपनी कुछ फजीलतें हैं, और जुमा तो बड़ा मुबारक दिन है। जुमे के दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिन जिस पे सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इतना ये मुबारक दिन है, इसकी बरकतें हम समेटने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो दिन है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी घड़ी आती है कि जिसमें इंसान जो भी दुआ करे वो कबूल की जाती है, तो इस दिन की उस घड़ी को हम तलाश करने की कोशिश करें। और उलमा ने इस घड़ी के बारे में फरमाया कि खास तौर पे दो टाइम्स ऐसी हैं जिसमें इस घड़ी को आप तलाश करें, एक जुमे की अजान से नमाज के मुकम्मल होने तक, दूसरा असर के बाद से मगरिब तक। तो हम अपनी बहुत सारी दुआएं कबूल करा सकते हैं, वैसे भी मगरिब से पहले तो इफ्तार के वक्त वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन देखिए ना जब दो फजीलतें मिल जाएं, यानी एक रमजान की भी फजीलत है, फिर एक जुमे की भी फजीलत है, तो दो फजीलतें मिल गई तो और ज्यादा हमारे पास चांस है कि हम अपनी दुआ को कबूल करा लें। और जुमे की अजान से नमाज मुकम्मल होने तक तो है, और जो इस नमाज की तक पहुंचने में जल्दी करता है, पहले जाता है, अव्वल वक्त में जाता है, जैसे पांच औकात कहे जाते हैं जुमे के, तो हदीस में आता है जो पहले वक्त में आया जुमा पढ़ने के लिए तो उसके लिए ऊंट की कुर्बानी का अजर है, जो दूसरे वक्त में आया उसके लिए गाय की कुर्बानी का अजर है, जो तीसरे वक्त में आया मींडे की कुर्बानी का अजर है, जो चौथे वक्त में आया मुर्गी की, और पांचवें वक्त में आया तो अंडे की कुर्बानी का। और जब इमाम मिंबर पे चढ़ जाए तो फरिश्ते फिर हाजिर होके खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं, वो अपने सहीफे रजिस्टर वगैरह बंद कर देते हैं। तो जुमा मुबारक दिन है, इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी जुमे के लिए जाएं, खास तौर पे मर्द हजरात, औरतों के ऊपर तो जुमा फर्ज नहीं है, लेकिन मर्दों को चाहिए कि वो जल्दी जुमे का इत्तमाम करें और इसकी सालते समेटने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ये दिन हमें दिया है यानी इस उम्मत को, दूसरा दिन तो यहूद का दिन और तीसरा इतवार का दिन जो है नसारा का है, लेकिन जो खास मुसलमानों के लिए दिन है जिस दिन वो अपनी इबादत को खालिस करें और इबादत पे तवज्जो दें, वो जुमे का दिन है। और फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन अच्छी तरह गुसल करता है, फिर जल्दी अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंचता है, पैदल जाता है, सवार नहीं होता, और इमाम से करीब होके बैठता है और खुतबा सुनता है, और कोई लघव बात नहीं करता। उसको हर कदम पर, याद रखें, हर कदम पर 1 साल के रोजों का और कयाम का सवाब मिलता है। अब आप सोच लें कि आपके घर से मस्जिद कितनी दूर है। अब मसलन है कि 100 कदम पे है, तो 100 साल के रोजों का सवाब और 100 साल के कयाम का सवाब मिलेगा। अबू दाऊद की ये रिवायत है। तो लिहाजा इसकी कोशिश करें कि जल्दी जाएं और जुमे के दिन कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद भेजें, क्योंकि हदीस आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जुमे के दिन और जुमे की रात मुझ पे कसरत से दुरूद भेजा करो। बस जो मुझ पे एक दफ़ा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो रात कब से शुरू होती है? जब थर्सडे नाइट है, थर्सडे को जुमेरात को सूरज गुरूब हो जाता है, तो जुमे की रात शुरू हो गई और फिर अगला दिन सारा जुमे का दिन है। इमाम इब्ने कय्यम जौजी फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपनी सांसों की तादाद के बराबर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता है तो वो आपका हक अदा नहीं कर सकता और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत का कर्ज चुका सकता है। तो जुमे के दिन तो ज्यादा ही भेजे, वैसे भी आप दुरूद पढ़ते रहें, क्योंकि इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना वबाओं को और बड़ी बड़ी मुसीबतों को ख़त्म करने का सबब बनता है। ये जो हमारे पर मुसीबतें, आफतें, बीमारियां, ये सब चीज़ आ रही होती है ना, तो ये दुरूद जो है जब आप कसरत से वो पढ़ेंगे तो आप के ऊपर से ये मुसीबतें टल जाएंगी, वबाएं दूर हो जाएंगी। और ये सारा इस दरू शरीफ का जो है ना इम्तियाज है कि इसकी वजह से आपने कुछ दुआ नहीं की कि अल्लाह ताला मेरी ये मुसीबत दूर कर दे, मगर दरू शरीफ की बरकत से आपकी मुसीबत दूर हो जाती है। तो दरू शरीफ की जरूर कसरत कीजिए, ये फायदा ही फायदा है। और खास तौर पे जुमे को तो एक ही जिक्र जुबान के ऊपर जारी होना चाहिए और वो है दरू शरीफ। जो जितना दुरूद पड़ेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत कयामत के दिन उसको मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब होगा। तो कौन नहीं चाहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना कयामत के दिन? और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, इस नेमत का हम कर्ज नहीं चुका सकते। तो दुरूद भेजें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दुरूद भेजने की तलकीन फरमाई है मोमिनों को। जुमे का दिन ना सिर्फ दुनिया के अंदर बड़ा बाबरकत दिन है बल्कि जन्नत में भी। हदीस में आता है एक बाजार है जिसमें जन्नती जुमे को जाया करेंगे और उस दिन शिमाल की ऐसी हवा चलेगी जो उनके चेहरों और उनके कपड़ों पर फैल जाएगी और उनकी जीनत और उनके हुस्न को और बढ़ा देगी। फिर वो अपने घर वालों के पास जब वापस आएंगे तो वो भी हुस्न जमाल में और बढ़ गए होंगे। तो जुमे का दिन इतना बाबरकत दिन है, ये वहां पर भी जन्नत में भी एहतमाम है। जन्नत में भी जन्नती भी इस दिन एक स्पेशल उनको ऑनर मिलता है कि उनका हुसन बढ़ जाता है पहले से। इसी तरह जुमे के दिन सदका करना, जुमे के दिन सदका करना, तो जुमे के दिन खास तौर पे सदका करने की तलकीन की गई है। जहाँ पे जुमा की बहुत सारी सुन्नतें हैं वहाँ पर ये भी एक सुन्नत है कि जुमे के दिन आप सदका किया कीजिए। जुमे के दिन वैसे भी सदका करना चाहिए, लेकिन जुमे के दिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खास हैं जिनमें एक सदका और खैरात करना भी है। फिर जुमे के दिन आप सूरह कहफ पढ़िए। सूरह कहफ पढ़ने के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर हो जाता है। नूर, आप सोच लिए कि कितना नूर होगा वो जो इंसान के पैरों से लेके और आसमान तक नूर ही नूर होता, और कयामत के दिन उसके लिए रोशनी होगा और 2 जुमों के दरमियान के अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देता। तो सुभान अल्लाह के इतना नूर, ना नूर किसी को मिल जाएगा कयामत के दिन भी ये सूरह कहफ उसके लिए वहां पर रोशनी का बायस बनेगी, क्योंकि कयामत का दिन अंधेरा दिन है, उसके लिए रोशनी यहां से लेके जानी है। तो सूरह कहफ पढ़ने से, और ये किसी और दिन आप पढ़ेंगे तो ये फजीलत नहीं मिलेगी, ये सिर्फ जुमे के दिन आप पढ़ेंगे तो फजीलत मिलेगी। और इसको आप किस वक्त से पढ़ सकते हैं, यानी जुमेरात की जो मगरिब हो जाए उसके बाद से लेके जुमे की मगरिब के दरमियान किसी वक्त भी आप पढ़ लें, लेकिन शुरू में ही पढ़ लें तो बेहतर है। ज़रूरी नहीं जुमे के टाइम पे ही आपने पढ़नी है, उसी का इंतज़ार करना है। और आप रात को टाइम रखते हैं ज़्यादा तो उस वक़्त पढ़ लें। और जानते हैं अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल तरीन नमाज कौन सी है? आपको लगेगा जुमे की नमाज है। जी नहीं, जुमे के दिन फजर की बाद जमात नमाज सबसे अफजल तरीन है। लिहाजा मर्दों को चाहिए कि जुमे के दिन फजर वो मस्जिद में जाके पढ़ा करें। और इसके अंदर क्या पढ़ना चाहिए जो मसनून है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं, कुछ और पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुरान में से कुछ सूरतें हिफ्स हैं तो जुमे की फजर की नमाज में आप सूरह सजदा और सूरह दहर तिलावत कीजिए, यानी सूरह इंसान भी जिसको कहते हैं, एक रकत में सूरह सजदा और एक रकत में सूरह दहर या इंसान, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह गुसल करना, मिसवाक करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, नाखून काटना, खुशबू लगाना, मर्द खुशबू लगा के जाएं जुमा पढ़ने के लिए, औरतें ऐसी खुशबू ना लगाएं जो फैलने वाली होती, घर में खुशबू लगा के रहें, बालों में तेल लगाना ये भी सुन्नत है, मस्जिद में इमाम के करीब होके बैठना भी सुन्नत है, मस्जिद में पहले से हाजिर होना भी सुन्नत है, इसी तरह मस्जिद में 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ना। और जब आप जुमे की नमाज पढ़ लें तो अगर आप मस्जिद में सुन्नतें अदा करना चाहते हैं तो 4 सुन्नतें पढ़ें, यानी जुमा पढ़ने के बाद 4 सुन्नतें पढ़ें या 6 पढ़ें। और अगर घर आके अदा करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 रकत पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। वैसे तो हम सिर्फ 2 रकत ही पढ़ते हैं सुन्नत की, वैसे हम घर में जब जुहर पढ़ते हैं, लेकिन जब आप जुमा पढ़ें तो उसके बाद आपने मस्जिद में पढ़नी है तो 4 रकत कम अज कम अदा कीजिए। इस तरह और भी जुमा के दिन फजीलतें हैं जिनमें, ये जैसे मैंने आपको दुरूद शरीफ का बताया, तो दुरूद शरीफ का भी इमाम जौजी फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों, अल्लाह के बंदों के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना लाजिम है, वो लाजिम पकड़े इसको, क्योंकि जब अल्लाह ताला बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी जुबान पे दुरूद को जारी कर देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से भलाई का इरादा होता है कि इंसान की जुबान के ऊपर दुरूद जारी हो जाए। तो जुमे का खास तौर पे इतमाम कीजिए। और औरतें अगर जुमे के लिए जाना चाहें तो कोई हार सिंगार करने की करके जाने की जरूरत नहीं, ये ना हो कि अपनी नेकियां गंवा दें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जुमे के दिन एक घड़ी में दुआएं कबूल होती हैं, तो खासुल खास अपनी औलाद के लिए बहुत दुआएं करें, बहुत दुआएं करें। बहुत से वालदैन इस चीज़ के ऊपर परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे को, मतलब कैसे उनकी सही तरबियत करें, कैसे क्या करें उनके साथ। तो बात यही है कि हम ये तो ज़रूर करें कि उनकी तरबियत, अच्छी तरबियत का एहतमाम करें, मगर कोई भी ये ना समझे कि मेरी तरबियत की वजह से ही मेरे बच्चे सही निकल सकते हैं। इसलिए कि ये ऐसे ही है जैसे कि आप रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई गारंटी तो नहीं है कि आपको रिस्क मिलेगा आपकी मेहनत के मुताबिक, बल्कि बाज लोगों को अल्लाह ताला बहुत नवाज देता है, बाज लोगों को पास कुछ भी नहीं होता, वो मेहनत पे मेहनत किए चले जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नहीं मिलता, अल्लाह ताला की देन होती है। इसी तरह औलाद भी जो है ना, इसकी इसका नेक होना ये अल्लाह ताला की देन है। तो लिहाजा इसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करें बहुत ज्यादा। वैसे तो इंसान, इब्ने जौजी फरमाते हैं कि इंसान बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी करता है जिनका कफारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गम के सिवा और कुछ नहीं होता, यानी अल्लाह ताला इस तरह उसके गुनाह को धोता है, क्योंकि उसको औलाद की तरफ से गम आते हैं औलाद सही नहीं निकली, या औलाद ने कुछ ऐसे काम किए जो माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बने, या औलाद के नसीब नहीं ऐसे जैसे कि वो चाहते थे कि ऐसे नसीब हों कि भाई खुश हों या इस तरह, तो औलाद की तरफ से मिलने वाला जो गम है वो इंसान के गुनाहों को धोता है। तो अगर किसी की औलाद की तरफ से परेशानी भी आती है तो इसको भी इसके ऊपर भी कोई गिले शिकवे ना करें, बल्कि समझें कि मेरे गुनाहों का कफारा है। और इनकी तरबियत के मामले में भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, मगर ये ना सोचें कि मैंने तरबियत में कमी की जिसकी वजह से ये ऐसे निकल आए, या फिर ये ना सोचें कि मैंने तो इतनी अच्छी तरबियत की थी ये कैसे हुआ कि ये ऐसे निकल आए, तो इसका मतलब है तरबियत करनी ही नहीं चाहिए सही। तो इसको समझें कि ये अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक होती है, या अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे हम मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, तो दुनिया की हसना में एक ये भी है कि इंसान की औलाद नेक हो, नेक निकल आए। इनके तरबियत के मामले में लगे रहें, और ये भी सोचें कि बाज़ दफ़ा इंसान के जो गुनाहों की वजह से चूंकि औलाद की तरफ से गम आता है, तो हम इस्तिग़फ़ार भी बहुत ज़्यादा करते रहें कि अल्लाह ताला हमें हमारी औलाद की तरफ से ना आज़माए, तो अपने गुनाहों पे बख्शिश मांगते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों की औलाद नेक है वो भी इसके ऊपर कोई बहुत फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अपना कोई कारनामा ना समझें कि जी हमने बच्चों की तरबियत की थी और फलाने नहीं की, और देखो मैं तो ऐसे करती थी और मैंने ये नहीं। अगर आपके बच्चे अच्छे निकल आए हैं तो इसको हमेशा ये समझें कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं, जैसे मैंने आपको रिस्क का बताया इसी तरह औलाद की तरबियत करना भी कोई ऐसी गारंटी नहीं कि मैंने अच्छी कर दी तो अब अच्छे ही निकलेंगे, ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जो लोग अपना कमाल समझते हैं इसको, वो समझ लें कि नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा बेहतर तो कोई तरबियत नहीं कर सकता था, जिन्होंने गैर लोगों को भी 950 साल तरबियत की और कोशिश की और तालीम दी, कैसे हो सकता है वो अपने बेटे को भूल गए होंगे, लेकिन उनका बेटा देखें फिर कैसे निकला बिगड़ा हुआ। तो अगर तरबियत से ही होता होता तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटा ऐसा ना होता। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने उनकी कितनी अच्छी तरबियत की थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसी तरबियत नहीं थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे निकले के खलीलुल्लाह बने। तो अल्लाह ताला की ये तकसीम है, ये अल्लाह ताला का फैसला है किसको कितना देना है या किसकी को कैसी औलाद देनी है। इसमें अल्लाह ताला से बहुत मांगे, ज़रूर मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, ख़ास तौर पे जब ऐसी घड़ियां हों तो इसके अंदर बिल्कुल चांस मिस ना करें कि औलाद के लिए हमने मांगना है। और दो दुआएं आज आपके सामने रखती हूँ जो औलाद की तरबियत के हवाले से और इनकी इनके अच्छे निकलने के हवाले से बहुत कारामत है, कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इनकी अच्छी तरबियत कर सकें, और ये भी कि अल्लाह ताला इनको अच्छा बना दे। तो पहली जो दुआ है सूरह अहकाफ में आयत नंबर 15 में, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदाहू व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, के ऐ मेरे रब मैं तुझसे तौफीक मांगता हूँ कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ उन नेमतों पर जो तूने मुझे अता की और मेरे वालदैन को। तो सबसे पहली दुआ क्या है कि मुझे शुक्रगुजार बना दे, शुक्रगुजारी भी एक नेमत है। और नंबर टू दुआ इसमें क्या है, मैं ऐसा अमल करूँ जिससे बस तू खुश हो जाए, अल्लाह मुझसे वो अमल करा लेना। तीसरी बहुत अहम दुआ जिसके लिए हम ये दुआ को चूज कर रहे हैं वो है कि अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना के मुझे सुख दे, और तीसरी बात कि अल्लाह मैं तौबा करती हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे इब्ने जौजी ने फरमाया कि इंसान के अपने गुनाह होते हैं बाज़ दफ़ा, कि जिसकी वजह से औलाद की तरफ से मुश्किल आती हैं, परेशानियां आती हैं, देखनी पड़ती हैं, गम आते हैं औलाद की तरफ से, तो फिर हम तौबा भी करें साथ साथ। और आखिर में बात कि इन्नी मिनल मुस्लिमीन, के मैं तेरे फरमाबरदारों में से हूँ। तो ये बहुत अच्छी दुआ है। दूसरी दुआ भी कुरान करीम में सूरह फुरकान में, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, के अल्लाह इसमें तो शोहर या शोहर के लिए बीवी, जो भी जोड़ा है मेरा, स्पाउस है मेरा, उसको भी और मेरी औलाद को भी मेरी आंखों की ठंडक बना दे। और एक नेक इंसान के लिए आंखों की ठंडक वो ही औलाद है जो दीन पे हो, जो सिराते मुस्तकीम पे चलने वाली हो। और अल्लाह हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे हम सबको। तो ये दुआ भी बहुत अच्छी है औलाद के लिए मांगने के सिलसिले में। और जिन औरतों को अपने शौहरों की तरफ से मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, शौहर कोऑपरेटिव नहीं होते या उनका ख्याल नहीं करने वाले होते, तो वो इस दुआ को ज़रूर मांगा करें। इसमें शौहर के लिए भी है, या जो बीवियों से तंग आए होते हैं वो भी ये दुआ मांगा करें। इसी तरह रात को कुछ सोने के अस्कार आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आप ज़रूर करके सोएं हर रात, जिनमें एक सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, आमना रसूल से आगे तक, एंड तक। ये इतनी ज़रूरी है और इतनी इंसान के लिए बेनिफिशियल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये दो आयतें रात को पढ़ ली तो ये उसके लिए काफ़ी है। किस चीज़ से काफ़ी, ये नहीं फरमाया क्या क्या किस चीज़ से सफिशेंट है, यानी तहज्जुद पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, हर शर से हिफाजत से, शैतानों से, चोरों डाकुओं और हर तरह के शर से। और मतलब कुछ और नहीं पढ़ सके, लेकिन ये दो पढ़ लिया तो ये काफ़ी हो गई। ठीक है, तो ये दो आयतें ज़रूर पढ़ के सोएं। फिर कोशिश करिए कि कलमा तैयबा ज़रूर पढ़ के सोएं, कि अगर रात में मौत आ गई सोते सोते तो कलमे पे मौत आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और भी आपके पास जो अस्कार हो इस चीज़ के, सोने के अस्कार हैं, तो वो ज़रूर करके सोएं, जैसे कि सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, ये तीन तीन दफ़ा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक लें और सारे जिस्म पे, सर से जहाँ तक आपके हाथ जाते हो वहाँ तक फेर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत थी, हत्ता के बिस्तरे मर्ग पे भी ऐसा ही किया आपने। जो आप नहीं कर सकते थे तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने पढ़ के आपके हाथों पे फूंका, क्योंकि मुबारक हाथ हैं आपके, तो आपके हाथों पे फूंक के इस तरह से फेर दिया। इसी तरह चलें, अब आप ये जो जुमे की सारी सुन्नतें आज पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि सुन्नत के ऊपर अमल करने पे भी हमें अजर मिलता है। और ख़ास तौर पे सदका करने की सुन्नत को ज़रूर पूरा करें। जो लोग बीमार हैं वो ज़रूर ये करें, अपनी बीमारियों का इलाज सदके से कीजिए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके के ज़रिए इलाज करें। तो जहाँ पे आप दवा ले रहे हैं वहाँ पे सदका को भी इलाज समझें, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ना इलाज, तो हमें इसको इलाज समझना है। तो इसके ज़रिए आप अपनी बीमारी भी दूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई काला बकरा ही आपने को देना है तो फिर ही कोई सदका होगा। सदका जहाँ पे किसी को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे कोई भूखा है तो उसको खाना दे दें, किसी के पास दवा नहीं है उसको दवा लेके दे दें, किसी के बच्चे हैं वो स्कूल की फीस नहीं अदा कर सकते उनको दे दें, कोई कर्ज की वजह से परेशान बैठा हुआ है उसको उसका कर्ज अदा कर दें। तो इस तरह से आप कहीं पे भी सदका कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में सदका कर सकते हैं। मगर ज़रूरी नहीं कि आप ये जो एक हमारे जहन के अंदर होता है कि अगर बकरा ना दिया तो सदका ही नहीं होगा, या काला ना दिया तो सदका नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए और हमारी इन जो भी छोटे मोटे काम हम कर रहे हैं इनको महफूज कर ले अपने पास और हमसे राज़ी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।